नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने रूस से तेल आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के ऐतिहासिक अध्ययन की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कार्रवाई अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है। ये कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इस बात का उल्लेख करते हुए कि अमेरिका ने हाल ही में रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि देश का आयात बाजार कारकों पर आधारित है और भारत के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्र हित में उठा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने हाल के दिनों में रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज भारत रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो रूस से भारत की तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 25% कर देंगे। एक रिपोर्ट।
ये यात्रा भारत और रूस के बीच सहयोग पर केंद्रित है। श्री डोभाल के रक्षा उद्योग सहयोग पर भी बातचीत करने की संभावना है। भारत का रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। दोनों देश कई द्विपक्षीय परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। इसमें S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंकों और SU-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति, INS विक्रमादित्य और भारत में AK-203 फलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
भारत और रूस ने आज औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने संबंधी अपनी रणनीतिक साझेदारी और साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण और खनन क्षेत्र के उपकरण में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अन्वेषण तथा औद्योगिक और घरेलू कचरा प्रबंधन के अलावा एल्यूमिनियम, उर्वरक तथा रेल परिवहन में सहयोग बढ़ाने का स्वागत किया। ये चर्चा व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के ढांचे के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज मॉस्को स्थित क्रेमलिन में अमरीकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विल्कॉफ से मुलाकात की। क्रेमलिन के हवाले से रूस की सरकारी मीडिया ने बताया कि यह मुलाकात रचनात्मक और उपयोगी रही और इसमें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर विचार विमर्श किया गया। रूस के राष्ट्रपति के प्रेस सूत्रों के अनुसार पुतिन और विटकॉफ के बीच ये मुलाकात लगभग 3 घंटे चली। विटकॉफ आज सुबह मॉस्को पहुंचे। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अगस्त तक रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड द्वारा सैन्य बलों और हथियारों का इस्तेमाल करके कंबोडिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कानूनी कार्रवाई निराधार और राजनीति से प्रेरित है तथा इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कंबोडिया शांति के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार उकसावे के बावजूद वो युद्ध विराम समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने झारखंड में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महत्वपूर्ण अध्ययन को तपेदिक उपचार के लिए आदर्श बताते हुए इसकी सराहना की है।
वर्ष 2023 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ ने रासन अध्ययन में पाया कि तपेदिक रोगियों को पोषण युक्त भोजन देने से उनके उपचार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और मृत्यु दर भी घटी है। अध्ययन के अनुसार जिन रोगियों को भोजन राशन प्राप्त हुए वे रोग से बेहतर तरीके से उबरने में सफल रहे। पोषण युक्त भोजन प्राप्त करने वाले रोगियों में मानक उपचार पाने वाले रोगियों की तुलना में जीवित रहने की दर बेहतर हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर तपेदिक को समाप्त करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों को इसी प्रकार की रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। तपेदिक से लाखों लोग प्रभावित होते हैं और प्रत्येक वर्ष इस रोग से हजारों लोगों की मृत्यु होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि तपेदिक उपचार में पोषण युक्त भोजन का समायोजन इस रोग को समूल नष्ट करने में परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबा कियानो ने सोमवार को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई सफलतापूर्वक संपन्न की। यानो सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों अर्थात 7 शिखरों वाले पर्वतारोहण अभियान पर है। समुद्र से 5,895 मीटर की ऊंचाई वाले तंजानिया के किलिमंजारो पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व में सबसे ऊंचा खड़ा पर्वत भी है। श्रीलंका के पूर्व राज्य मंत्री शशीद राजपक्षे को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी 9 मई 2022 को विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई एक इमारत के लिए एक विवादास्पद मुआवजे के दावे से जुड़ी हुई है। राजपक्षे पर अपने पद का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से मुआवजा देने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। उन पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार की साजिश रचने का भी आरोप है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी में इजरायली सेना के संभावित विस्तार की खबरों को चिंताजनक बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेंका ने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और इससे गाजा में बाकी बचे बंधकों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर एक नई रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। ताइवान ने कहा है कि उसने आज सुबह अपनी जल सीमा के निकट चीन की बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियां देखी। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि चीन के 16 सैन्य विमान, 6 नौसेना जहाज और एक सरकारी जहाज ताइवान के आसपास घूम रहे हैं। 8 विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान जोन में प्रवेश किया। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान ने रिएक्टर इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक रुजबे वादी को इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वादी की भर्ती संवेदनशील आंकड़ों का संचार करने के कार्य के साथ विदेश में हुई थी। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने की घटना के आज 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दर्दनाक घटना में 1,40,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ये पहली बार था जब किसी युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था। इस परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। इस घटना ने मानव निर्मित विनाश की भयावह क्षमता को उजागर किया था। रूस के कामाचात्का प्रायद्वीप में क्लूचेवस्कॉय ज्वालामुखी के पास बांध टूटने की खबर है। इसके बाद क्षेत्र में यातायात बाधित होने की संभावना बढ़ गई है। पिछले महीने की 30 तारीख को आए जोरदार भूकंप के कारण उत्पन्न हुई ज्वालामुखी गतिविधियों को इस क्षति का कारण माना जा रहा है। चीन के ग्वांगझो प्रांत में आज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 7 लोग लापता हो गए, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बचाव कर्मियों ने भूस्खलन में फंसे कुल 14 लोगों में से 7 लोगों को बचा लिया है। बचाव कार्य जारी है। दक्षिण कोरिया में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। देश के कुछ हिस्सों में 120 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल आयात का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विल्कॉफ ने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।